प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
आज के हमारे श्रोता साथी हैं गिरिडीह झारखंड के हमारे वरिष्ठ श्रोता साथी मोहम्मद यासीन अंजान और इनसे बातचीत कर रहे हैं सुनील चिपड़े।
नमस्कार, अरपा कम्युनिटी रेडियो और अरपा वेब रेडियो सुनने वालों सभी लोगों का कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में आप सभी का अभिनंदन है। और आज हम आपको बता दें कि हमारे बीच आज गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान साहब हैं और आज हम आपसे बात करेंगे और आपकी पसंद के गीत सभी श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। तो यासीन साहब, कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में आपका स्वागत है।
आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और रेडियो अरपा सुनने वाले सभी श्रोता भाइयों का मेरा प्यार भरा नमस्कार।
यासीन साहब, पहले तो ये बताइए कि आप क्या करते रहे हैं और कैसा है आपका सफर जीवन का?
मेरे बचपन से शौक था रेडियो सुनने का और बिजनेस में मेरी दिलचस्पी थी, साथ में राजनीति से भी मैं जुड़ा हुआ।
अच्छा।
और आज तक भी मैं राजनीति से जुड़ा हूँ। पहले मेरे कपड़े की कारोबार था, तो फिलहाल मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कि मेरा एज 73 इयर्स अभी है।
एक लंबे समय तक आपने कपड़े का व्यापार किया और अब आपने काम से रिटायरमेंट ले लिया है।
जी जी
जी, ऐसा कह सकते हैं
जी, लेकिन रेडियो से रिटायरमेंट नहीं,
वो तो ऐसा जुड़ाव है कि ताउम्र चलता है।
जी
बिल्कुल। तो किस तरह के कपड़े का व्यापार था?
रेडीमेड और थान दोनों था।
अच्छा। अभी आप जो देख रहे हैं जिस तरीके से कपड़े का व्यापार आज की तारीख में है, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, और उस समय जिस तरीके से कपड़े का व्यापार व्यवसाय होता था, एक घरेलू आदमी की तरह होता था।
जी,
कपड़े
जी,
का व्यवसाय जिसमें लोग जाते थे और कपड़े खरीदते थे, साल साल भर के कपड़े खरीदते थे।
जी,
त्योहार बार में
अभी, जी, अभी और उस समय में बहुत सा बदलाव आया है।
जी जी। तो कैसा बदलाव देख पाते?
ज्यादातर लोग अब मॉल और ऑनलाइन एक फैशन बन गया है। पहले लोग जरूरत के चीज ज्यादा माने खरीद पाते थे, उतना ही उन लोगों के पास पैसा था। आज के जमाने में जरूरत कम और शौक ज्यादा है।
जी,
उस ढंग से वो चीज मॉल और ऑनलाइन में ही पूरा हो पाता है।
जी जी, बहुत पते की बात की आपने कि अब पहनने ओढ़ने की चीजें शौक हो गई है और पहले जरूरत हुआ करती थी।
जी
हाँ। और आपने ये भी देखा है कि जैसे जो दुकानदार होते थे पहले, कि वो एक घरेलू सदस्य की तरह होते थे, साल साल भर उधारी चला करती थी और बड़े बेफिक्री से।
और ये उधारी तो गांव में ज्यादातर चलता था। हम पहले गांव में ही रहते थे और जब बच्चे लोगों को पढ़ाए लिखाए वो शहर में बस गए, शहर में बिजनेस करने लगे, तो हम शहर चले आए। पहले बिहार में थे और बिहार से अब झारखंड में चले आए। हालांकि बीच बाच में गांव चले जाते हैं।
उस समय बड़ी बेफिक्री से व्यापार भी होता था, अपने ही गांव के लोग हैं, अपने परिचित हैं, तो त्योहार बार में, शादियों में बड़े बेफिक्री से सामान दे दिया करते थे कि हाँ पैसा कहाँ जाएगा, आ जाएगा।
सही बात। हाँ, होली और दुर्गा पूजा दो समय में अच्छी बिक्री होती थी।
अच्छा।
और ईद में और लगन में भी बहुत ज्यादा मैंने फायदा का मैंने रहता था।
बहुत जरूरी बात आप कह गए कि होली में अच्छी बिक्री हुआ कर।
जी,
एक परंपरा थी होली में भी नए कपड़े खरीदने। अब तो लोग होली के समय नहीं खरीदते हैं, लेकिन पहले नियमतः लोग खरीदते थे। तो आपने जैसा कहा कि आप गांव में रहा करते थे, तो वो गांव कहाँ का था, कौन सा था, वहाँ का वातावरण आप डिस्क्राइब करेंगे हमारे सुनने वालों
के? जी, वो बिहार के एक जिला है जमुई और एक गांव है दुलमपुर, जो झारखंड के बॉर्डर पर बसता है। अभी भी जंगलों से घिरा हुआ गांव है।
अरे वाह।
और वातावरण तो बिल्कुल साफ सुथरा है। ये जो अभी जो बीमारी आया था COVID-19, उस समय भी वहां के लोग महफूज रहे, इसलिए कि गांव का वातावरण और आबो हवा बहुत साफ सुथरा रहता है। किसी को एक आदमी को भी मैंने वहाँ ये बीमारी नहीं निकला। जबकि हाँ, जबकि चेक करने के लिए टीम आई और 134 लोगों को जांच किया, लेकिन एक भी बीमारी नहीं निकली।
वाह, क्या बात है। मतलब शहरों में खूब भीड़ है, वातावरण दूषित है, तो यहाँ बीमारियों का प्रसार ज्यादा होता है और गांव के शुद्ध वातावरण में और लोग कम है, आपसी सहयोग से रहते हैं, दूर दूर घर होते हैं, तो बड़ा उन्मुक्त वातावरण होता है जो बीमारियों से भी दूर रहे।
शहर में भी कुछ फैसिलिटी है, कुछ गांव में भी फैसिलिटी है, दोनों जगह अलग अलग है। जैसे पढ़ाई लिखाई के मामले में गांव थोड़ा पिछड़ा रहता है, इलाज के मामले में भी थोड़ा गांव वाले को कभी कुछ हुआ तो उन लोगों को मायूसी होती है, जो अगर शहर में रहते तो तुरंत मेरा इलाज होता। ये सब चीजें हैं, लेकिन आबो हवा के मामले में गांव के मुकाबले कभी भी शहर नहीं हो सकता। दोनों जगह रह के देखा, हम तो गांव में भी रहते हैं और शहर भी आ जाते हैं, फिर गांव भी चले जाते हैं, फिर शहर भी आ जाते हैं।
क्या बात है, आपका जुड़ाव दोनों तरफ से बना हुआ है और रेडियो से भी आपका जुड़ाव है, तो बताइए।
गांव में जो लोग हैं ना, अखलाक मोहब्बत अभी भी ऐसा बना हुआ रहता है, जब जाते हैं तो लोग मिलने जुलने वाले इतने आते हैं जो लगता है जो हाँ गांव में मैंने लोगों के बीच हमारी कुछ पहचान है, हमारे लिए उन लोगों के दिल में दर्द है, अखलाक मोहब्बत है। और वो बात शहर में, शहर आते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता है जो हम आए हुए, अपने रूम में रहिए और फिर अपने काम से सबको मतलब है, और वैसा गांव में नहीं है। गांव में तो पूरे 20 किलोमीटर में भी कहीं पहुंच जाइए और बताइए हमको फलाने जगह जाना है, तो वो आपको बहुत इत्मीनान से सारा चीज बताएगा जो हाँ इसी रास्ते में है, फलाना आदमी को हम जानते हैं। ऐसा गांव का माहौल होता है, शुद्ध पानी, दूध सही, ये सब सारी चीजें मिलती है,
पूरा एक बड़ा परिवार होता है गांव।
जी जी, सही बात। जैसे गांव में शादी ब्याह हुआ तो हम मुस्लिम परिवार हैं, तो सिर्फ मुस्लिम परिवार में ही नहीं, खान पान हमारे हिंदू भाइयों के बीच में भी चलता है। इस तरह लगता है जो पूरा मेरा माने एक परिवार है हम लोग।
सही बात है, जो रिश्ता है, जो दोस्ती है,
वो रिश्ता आज भी कायम है।
यही हमारी पहचान है, यही हमारी भारत की विविधता में एकता की बात है, और ऐसा ही जुड़ाव रेडियो भी देता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग गीतों के माध्यम से, सुनने सुनाने वालों के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं।
रेडियो से तो इतना मैंने समझिए कि लोगों से दोस्ती हुई और जान पहचान हुई, जो उस वक्त सिर्फ हम लोग पोस्ट कार्ड लिखा करते थे और बहुत ज्यादा जिनसे दोस्ती हो जाती थी वो मांगते थे फोटो, तो उनको एक फोटो भेज दिया जाता था और वो भी अपना एक फोटो भेज देते थे। इसके आगे हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे। और जब सोशल मीडिया आई तो उनका मोबाइल नंबर मिला, उनसे वीडियो कॉलिंग हुई, उसके बाद जिनसे ज्यादा घनिष्ठता बढ़ा तो उन लोगों से जाके मुलाकात बात भी हुई। और हमें शुरू से ये दो चीजों का बहुत बड़ा शौक रहा है, रेडियो सुनना और साथ में उन श्रोताओं से भी मिलना।
क्या बात,
काफी लोगों से हम मिल चुके हैं, काफी श्रोताओं से हमारी जान पहचान है जिनसे हम मिल भी चुके हैं कई बार, उनके घर गए, और हिस्टोरिकल प्लेस देखने का बहुत शौक है। हमने कम से कम 15-20 किला को देखा होगा, सारे किले को देखते हैं, और म्यूजियम में भी बहुत शौक है देखने का, इसलिए किला बहुत घूमे, झांसी का किला भी घूमे, इधर दिल्ली का किला, फतेहपुर, आगरा वगैरह वगैरह जितना भी किला है, गोलकुंडा का किला, मैंने हमको हिस्टोरिकल प्लेस देखने का बहुत शौक
है। वो हमारी प्राचीन विरासत है,
जिस फिल्म में और जिस फिल्म में हम सुन लेते थे कि उसमें कुछ हिस्टोरिकल प्लेस है, उस फिल्म को भी हम देखते थे।
क्या बात है, क्या बात,
शौक से। जैसे मुगल आजम को हमने कई बार देखा,
कितनी बार देखा होगा।
जी जी, शोले, ये सब कितनी बार देखे, लेकिन जी नहीं भरता था।
वाकई,
अब तो खैर हमको लगता है फिल्म देखे हुए 20 साल हो गया होगा, 20 साल से हमने फिल्म नहीं।
वाकई वो अलग ही बात थी, पहले दिन पहला शो जाना, एक फिल्म को 25-25, 26-26 बार टॉकीज में जाकर देखना।
जी जी जी, उस वक्त का अलग मजा था, अब तो सारी चीज मोबाइल और आपके टीवी में मिल जाता है, तो थोड़ा लोग का ध्यान उस तरफ से हटा, नहीं रही अब।
तो वाकई ये हमारे आपके जुड़ाव का बड़ा साधन है रेडियो, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता, और रेडियो है अरपा रेडियो, अरपा कम्युनिटी रेडियो और अरपा वेब रेडियो, और यासीन साहब के साथ हमारी बातचीत हो रही है। और यासीन साहब, पिछली बातचीत में एक संदर्भ आया था कि बहुत सारे श्रोताओं से खतों खतूतों की बात होती थी और तस्वीरों की शेयरिंग होती थी, तो आप लोग के तमाम श्रोताओं के कई बार सम्मेलन होते हैं, मुलाकातें होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत पुराने, बहुत दूर के कोई श्रोता आपस में मिलते होंगे, वो कोई एक्सपीरियंस आपका कैसा है?
उसमें सबसे ज्यादा हम प्रभावित हुए कोरबा के अजीज खत्री साहब से, हम वो हमारे आज से 40-50 साल पहले खताबत से जुड़े हुए थे, उसके बाद मेरे खत उन तक नहीं पहुंच पाए, तो मैंने कई बार उनको रजिस्ट्री किया, और रजिस्ट्री जब वापस चला आया तो हमको लगा शायद वो इस दुनिया में है या नहीं है, कुछ पता नहीं। और जब सोशल मीडिया का टाइम आया तो हमने फेसबुक पर कई बार ये लिख कर डाला, जो किसी भी फ्रेंड को अगर उनके बारे में कोई अता पता हो तो मुझे बताने का कष्ट करे। किसी ने नहीं बता पाया, तो फिर पता चला नामदूरा में एक बार सम्मेलन होगा, तो वहाँ भी हम पता लगाए, तो बोले ना वो तो आए नहीं, उनके बारे में नहीं पता है।
अच्छा,
तो मेरे दिल में ख्याल आया मनोहर महाजन साहब को एक बार पूछ के देख। मैंने मनोहर महाजन साहब को फोन लगाया, फोन में बात हुई, उनको बोले जो कोरबा के अजीज खत्री साहब का कुछ अता पता है आपके पास? बोले हाँ, वो तो अभी सुबह ही बात की है उनसे।
अरे
जल्दी जल्दी से हमको नंबर दे दीजिए भैया, बहुत मेहरबानी होगी। नंबर दिए, जब उनसे हमारी बात हुई तो दिल इतना तड़पा कि उनको हम बोले जो नहीं, अब हम बिना आपसे मिले नहीं रह सकेंगे, आप हमको तुरंत बताइए आप कहाँ मिलिएगा। तो वो बोले तो हम अभी तो जा रहे हैं बेटी के यहाँ भोपाल, हम तुरंत आते हैं भोपाल। हमने बस टिकट बनाया और भोपाल चले गए, और दोनों इतना मने जी भर के मिले जो क्या बताएं, उस खुशी का मैं इजहार नहीं कर सकता हूँ। उनके बेटी के यहाँ रहे, खाना खाए, और सारा रेडियो का पुराना सारा गप हुआ, और फिर वहाँ से एक दो दिन के बाद हम वापस चले आए। तो ये श्रोताओं से हमारा लगाव है। हमारे श्रोताओं में है हसनैन दीवाना साहब, जिनसे हम मिल चुके हैं। उसके बाद ये कमरुज्जमा बलिया के, जो लास्ट सम्मेलन में हम गए थे वो आज से 2 साल पहले रायपुर में सम्मेलन हुआ था
जी।
उस सम्मेलन में रिपुसुदन कुमार इलाहाबादी साहब थे, मनोहर महाजन साहब थे, और रायपुर के लोकल अनाउंसर थे, और श्रोताओं का एक बहुत बड़ा जमावड़ा था। बचकामल साहब नहीं आ सके, उनसे भी मुलाकात करने की बहुत तमन्ना थी, वो नहीं आए, लेकिन और बहुत सारे श्रोता आए थे। अल्लाह बख्श निजामाबाद के थे, उसके बाद पंजाब राम टेके, यानी बहुत श्रोता थे, नाम गिनाना मुश्किल है, इतने लोग थे जिनसे मिले। और ये हमारी बहुत मने ख्वाहिश रहती है सम्मेलन में जाएं, लोगों से मिलें, और उन लोगों से मिलें जिनका नाम आज से 40 साल पहले रेडियो पर गूंजा करता था, जैसे झुमरी तिलैया का नाम बहुत ज्यादा रेडियो पर आता था। और ये झुमरी तिलैया में जिस गाने की फरमाइश होती थी वो फिल्म भी हिट हो जाता था।
क्या बात है
उस वक्त। लेकिन लोगों के दिल में ये ख्याल था जो झुमरी तिलैया कोई काल्पनिक नाम है। इस जगह को हमारे मनोहर महाजन साहब ने एक अपने किताब में लिखे, जो हमने पता लगाया जो नहीं, झुमरी तिलैया झारखंड के ये गिरिडीह के ही करीब में एक जगह है जहाँ से लोग मैंने फरमाइश करते थे ये काल्पनिक नाम नहीं है।
अरे वाह, मतलब आप गिरिडीह में रहते हैं और झुमरी तिलैया के करीब रहते हैं क्या?
जी।
वाह वाकई, बहुत सारे सुनने वाले सोचते थे पता नहीं झुमरी तिलैया कहाँ है, कौन सी जगह है, कौन वहाँ है।
झुमरी तिलैया, भाटापारा, खंडवा, ये सब सारे नाम बहुत फेमस थे उस वक्त। और पुराने श्रोताओं का बहुत लोग अभी गुजर भी गए, अभी भी है हमारी दोस्ती। ललित चोरडिया साहब हैं, उसके बाद रफी रहमान साहब हैं।
तो ये जो श्रोताओं के नाम तो होते थे, दोस्ती यारी भी होती थी, और पूरा भारत दरअसल उन जगहों से भी जुड़ जाता था।
जी,
ये भाटापारा, खंडवा, नागपुर, ऐसे लगातार
ये ऐसा एक अखलाक मोहब्बत है, ना इसमें जात पात का कोई बंधन है, ना ऊंच नीच का है, ना गरीब अमीर का है, सारे लोग एक माने श्रोता परिवार के जैसा मिलते हैं, और बहुत अच्छे ढंग से बातचीत भी होती है, मिलना जुलना भी होता है, और मौका लगा तो किसी के घर भी चले जाते हैं। जैसे हमारे आसनसोल यहाँ से नजदीक होता है, वहाँ भी एक फेमस थे रामजी दुबे, अभी भी हैं, और निर्मल कुमार रवानी, उन लोगों के यहाँ गए, उनसे मिले। हम बीरगंज भी गए नेपाल, मंगलवान नेपाली थे, और एएस लिंको थे, यानी श्रोताओं से मिलने का कर्म उस वक्त भी था। हर साल फरवरी में निकलते थे, 10-20 श्रोताओं से मिलकर घर वापस आते थे, ये मेरा शौक था।
क्या बात है, क्या बात।
अब तो सम्मेलन होता है ना उस वक्त, और रेडियो को बगल में दबाए रहते थे, गार्जियन से बहुत बात सुनना पड़ता था, पढ़ाई लिखाई छूट जाता था। पढ़ाई लिखाई भी की है, पढ़ाई लिखाई में भी हम अव्वल रहे। पढ़ाई लिखाई में भी हम अव्वल रहे, जो जब गिरिडीह में आके पढ़े तो हम हायर सेकेंडरी का जब एग्जाम दिए तो एडवांस मैथमेटिक्स में मेरा 99 नंबर आया।
वाह,
तो टीचर ने दिखाया, देखिए गांव का लड़का है और बिना ट्यूशन किए इतना अच्छा मार्क ये पास किया है। तो रेडियो हमको कभी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं किया।
हाँ, आगे नहीं भटकाता है रेडियो।
ये भी चलता रहा, पढ़ाई भी चलता रहा और बिजनेस जब किए तो बिजनेस भी चलता रहा। जब ग्राहक आता था तो वॉल्यूम स्लो कर दिए, ग्राहक को भी संभाल लिए, सामान दिए, हो गया, फिर रेडियो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दिए।
क्या
और जब फुर्सत में है तो पोस्ट कार्ड छपा हुआ रहता था, उसमें फिल्म का गाना दीजिए और उसको फिर आपके डाकघर में जाके डालिए। उस वक्त का बहुत लोकप्रिय प्रोग्राम का हम जिक्र करना चाहेंगे, रेडियो पत्रिका और वाक्य गीतांजलि। आज भी जितने श्रोता पुराने सुनेंगे ना, तो उन लोगों का इस प्रोग्राम से जी मचल जाता है, जो क्या प्रोग्राम था और क्या दिलचस्पी थी उस वक्त।
वाकई मतलब वाक्यों के सहारे गीतों को बंदेश और गीतों के सहारे उन्हें वाक्यों की रचना।
आज मेरा ये दूसरा इंटरव्यू है अर्पा में। हाँ। और इसके पहले हमारे इंटरव्यू पटना आकाशवाणी में हुआ था
जी,
जब
जी।
हमारे हसनैन साहब उर्दू के अनाउंसर हुआ करते थे, उन्होंने बोला जो आपका इंटरव्यू लेंगे। दीजिए तो क्या इंटरव्यू लीजिएगा, बोले आप अपने गाँव का कोई खासियत, हम कहे वहाँ का यही है पत्तल का कारोबार है, तो उसके बारे में हमारा इंटरव्यू हुआ था।
अच्छा।
और वो इंटरव्यू का टाइम जब गांव में आए और रेडियो लगा दिए तो लोगों का जमावड़ा सुनने के लिए था, जो देखिए इसमें हमारे यासीन साहब का मैंने इंटरव्यू मैंने आज रिले होने वाला है।
यासीन साहब, जैसा आपने कहा कि गांव में जमावड़ा हो जाता था, वाकई अब सारी चीजें बदल गई हैं। लेकिन अर्पा कम्युनिटी रेडियो और अर्पा वेब रेडियो पे भी काफी जमावड़ा होता है, क्योंकि देश और दुनिया में बहुत सारे लोग सुनते हैं। अब मतलब कांख में रेडियो दबाने की बात तो लगभग खत्म हो गई है, लेकिन जेब में रेडियो लेकर के मोबाइल के रूप में चलने की बात है। वाकई रेडियो सुनने वालों के लिए नाम, शहरों के नाम सपनों जैसा ही है, और कभी वो व्यक्ति मिल जाए तो वह सपना सच होने की बात है, उन शहरों में पहुंच जाना जिनके नाम आप लगातार रेडियो में सुनते हैं। वैसा ही काम करने की कोशिश अर्पा कम्युनिटी रेडियो और अर्पा वेब रेडियो कर रहा है, इसीलिए ये प्रोग्राम है कि सप्ताह के श्रोता, सप्ताह के श्रोताओं से श्रोता, एक श्रोता हम सुनते हैं सप्ताह में, उनसे बातचीत करते हैं, उनके अनुभव हम साझा करते हैं और गीत तो रहते ही हैं। और इस साझेदारी के लिए आज हमारे साथ मोहम्मद यासीन अनजान साहब हैं, झारखंड गिरिडीह। यासीन साहब, अगली बातचीत हम आपसे करें उसके पहले एक बात आपने कही थी कि आपके गांव में पत्तल का कारोबार हो।
जी,
उस बारे में बताइए।
साखू का पत्तल होता है, उसका ये उसमें प्लास्टिक डाल के उसका प्लेट बनाया जाता है।
अच्छा।
और वो उसका सप्लाई उस वक्त होता था बलिया यूपी में और पटना फंक्शन वगैरह में उसको शुद्ध माना जाता है उसमें खाने के लिए। हाँ। आजकल तो फिर भी ये बहुत तरह का प्लास्टिक वगैरह का प्लेट और क्या हल्का जैसा एक
थर्माकोल का प्लेट,
थर्माकोल का निकला हुआ है, उस वक्त वो सब नहीं था और ज्यादातर लोग उसी पत्तल में खाने में शुद्धता मानते, इसलिए उसका मेरे यहाँ जंगल से सारे लोगों का बिजनेस भी चलता था और उससे ट्रक से बड़े लोगों का भी धंधा चलता था। जंगल से आदिवासियों का अभी भी गुजर बसर है, लकड़ी है, बहुत सारे जड़ी बूटी हैं, उसके बाद फल फ्रूट भी हैं, जैसे महुआ जंगल का एक फल है महुआ, और उससे तेल भी, तेलहन का भी काम होता है, उपकोनी का भी होता है, ये सब चीजें गांव का है।
हम वही कह रहे थे कि यही बात थी पुरानी जो हमारी आर्थिक व्यवस्था थी, या है भी कहना चाहिए, कि गांव हमारा, गांव के जंगल हमारे, गांव की वनस्पति हमारी, और उससे ही रोजगार उत्पन्न होता था, उससे घर चलते थे, उससे गांव चलता था।
अभी भी गांव में पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और जंगल से लकड़ी वगैरह का धंधा, ये सबसे अभी भी आर्थिक स्थिति उसी सबसे
सुधरती। ये प्लास्टिक और थर्माकोल का कचरा नहीं हुआ करता था, पत्तलों में लोग खाना खाते थे।
अभी हमारे यहाँ गाँव में जब भी फंक्शन होता है तो उसी पत्तल में खाना ज्यादा पसंद करते हैं लोग,
वो स्वाद बढ़ा दे।
जी जी,
यदि दाल और भात पत्तल में लिया हुआ, दाल भात बिखरा हो पत्तल में, पत्तल का स्वाद साथ में आता है।
गांव का अभी भी वही खाना है, बाढ़ा दाल चावल, और वेजिटेरियन रहा तो मछली खाने वाला रहा तो मांस चला, पापड़ है, सब्जी है, दही है, गांव का ये सब खाना था। आपके छत्तीसगढ़ में क्या खाना है लोकल, वो तो हमको पता नहीं, एक बार सुने थे भुजिया, तो पूछे थे भुजिया होता क्या है, बताया गया था जो ऐसा ऐसा बनता है।
हाँ, बहुत बहुत सारे व्यंजन है और अरपा रेडियो में कोशिश भी होती है कि उन व्यंजनों की जानकारी भी आप तक पहुँचाई जाए।
जी जी, अरपे में सुने थे इसीलिए आनिश भाई से हम पूछे जो ये क्या होता है भुजिया।
एक गुजिया होता है
जी, तो बोला यहाँ का, हाँ यहाँ का ये व्यंजन है और बहुत प्रसिद्ध है, जब जाएंगे तो खाएंगे।
जरूर जरूर, बिल्कुल, आप छत्तीसगढ़ आइएगा, बिलासपुर आइएगा तो गुजिया आपको जरूर खिलाएंगे और बहुत सारे और भी व्यंजन खिलाएंगे।
वहाँ पे हम तो 3 दिन रहे हैं दोस्त के यहाँ, अजीज खत्री साहब कोरबा से चले गए हैं अभी महासमुंद, तो गए थे उनके यहाँ।
आपने गाँव का जो वर्णन किया, गाँव के खान पान का वर्णन किया, पत्तलों से जो कचरा नहीं फैलता था उसका वर्णन किया, तमाम कुछ गांव के खाने की भी महक आप तक पहुंची होगी और मुंह में थोड़ा सा पानी जरूर आया होगा। और जो ये सारा वर्णन कर रहे थे वो हमारे साथ है मोहम्मद यासीन अंजान साहब, कार्यक्रम है सप्ताह के श्रोता। आपने एक शुरुआती बातचीत में यासीन साहब ये भी कहा था कि आप राजनीति से भी जुड़े हुए, तो राजनीति में या राजनीति के मार्फत आप क्या करते रहे हैं, कौन से पद में रहे हैं या किस तरह का आपने काम किया है?
मेरे एक ये नेता हैं, हम उनके ही हमेशा साथ रहे हैं, उनका नाम नरेंद्र सिंह है और वो शिक्षा मंत्री भी रहे और हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, वो 2 टर्म 20 सूत्री का हम मेंबर रहे और गांव में समिति का चुनाव जीते, 5 साल उसमें रहे।
अरे वाह, तो गांव की समिति का चुनाव मतलब क्या, किस तरह से
वोटिंग, जिस तरह एमएलए वगैरह का होता है उसी
तरह गांव के मुखिया सरपंच या इस तरह के चुने जाते हैं?
जी जी।
अच्छा,
5 साल और उसमें फंड भी आता है, उस फंड से बहुत सारे गांव का हमने पुल पुलिया रोड और बिल्डिंग वगैरह बनवाए।
क्या बात है, मतलब आप एक गांव के मुखिया भी रहे।
चांपाकल बनवाए बहुत सारे, उस वक्त कुआं से पानी अब तो नहीं पीता है लेकिन जिस वक्त हम 2002 में जीते थे तो कुआं का पानी ही लोग पीते थे, बहुत सारे कुआं का रिपेयरिंग भी करवाए और हमारे गांव में एक एडिशनल पीएचसी है उसका भी बिल्डिंग बनाने में सहयोग किए, ये सारी बात हुई। शिक्षा में हमारे गांव में अभी आइए तक पढ़ाई होती है गांव में ही, बच्चे पढ़ते हैं, उस वक्त तो सिर्फ मिडिल तक व्यवस्था थी और कच्ची रोड थे, अभी तो पक्की रोड हो गए और हमारे गांव के करीब एक हॉस्पिटल एम्स बना है।
वाह,
जिससे काफी लोगों को लाभ हो रहा है और वो एम्स इसी साल 21 में चालू हुआ है।
वाकई यही तो पंचायत अधिनियम की यही तो कल्पना थी और ग्राम पंचायतों में लोकतंत्र के माध्यम से मुखिया चुना जाना और गांव तय करे कि उनके गांव में क्या काम होना है, गांव का मुखिया तय करे कि सबकी सहमति से ये तय करे कि कौन कौन से चीजों की गांव में जरूरत है, यही गांधी जी का सपना था, जो ग्राम स्वराज का जो सपना है गांधी जी का। और गांधी जी कहा करते थे असल भारत गांव में बसता है, मतलब वो लोकतंत्र के मंदिर संसद को एक सभा कहते थे और उसी के पैरेलल ग्राम सभा को भी एक बड़ी सभा कहते थे। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सभी का मेल मिलाप, सभी के निर्णयों में सहमति, ये अद्भुत बात है और उसको आपने एक समय संचालित किया है 5 साल तक। हमें बहुत आनंद हो रहा है आपसे बात करके।
राजनीति में ये भी फायदा है, गरीबों का सेवा करने का भी मौका मिलता है, इसलिए कि साधन मेरे पास, अगर मान लीजिए आप किसी पद पर नहीं हैं तो आपके दिल में अगर गरीबों का सेवा करने का भी है तो आप अपने पैसे से ज्यादातर नहीं कर पाएंगे और अगर सरकार हमारे साथ है तो उस पद के फंड से लोगों का सेवा करने में मौका मिलता है, जैसे गरीबों के लिए इंदिरा आवास है, वृद्धा पेंशन है, ये सारी चीजें हमने बहुत लोगों को किया, राशन कार्ड बनवाया गरीबों के लिए, उस वक्त लाल कार्ड के नाम से जाना जाता था जिसमें एक भी पैसा नहीं लगता था, मुफ्त अनाज मिलता था, हमारे टाइम में 176 कार्ड बनवाए।
क्या बात है,
ये सब मौका मिला।
बहुत अच्छी बातचीत आपसे हो रही है।
उसी बिना पर आज भी गांव के लोगों से प्यार है और गांव के लोग को भी हमसे प्यार है, जो शहर में रहते हुए भी कभी कभी गांव की तरफ खींच जाते हैं, 2-4 दिन जाके लोगों से मिलजुल के फिर चले आते हैं।
वाकई रिश्तों के बीच हासिल क्या आता है, यही तो प्यार, यही तो मोहब्बत है जो आखिर तक बची रहती है। और अरपा कम्युनिटी रेडियो, अरपा वेब रेडियो के माध्यम से ही हम ये बातचीत साझा करते हैं और प्यार मोहब्बत भी बांटते हैं।
और ये गांव का ही देन है जो 73 ईयर्स होने के बाद भी अभी भी हमारी बेटी रहती है झारखंड के गुड्डा जिला में, जो यहाँ से 80 किलोमीटर या कहिए 100 किलोमीटर के आसपास है, बाइक से चले जाते हैं। बाइक चलाना भी मेरा एक शौक है।
वाह, अभी इस उम्र में आप बाइकिंग भी करते हैं?
जी जी।
क्या बात है। जी, मोहम्मद यासीन साहब हमारे साथ हैं गिरिडीह झारखंड से। यासीन साहब, झारखंड में या आपके गिरिडीह में, क्योंकि झारखंड बहुत समृद्ध है प्राकृतिक संपदा के लिए।
जी जी जी, खनिज संपदा के लिए ये बहुत संपन्न स्टेट माना जाता है।
तो आपके आसपास क्या है?
यहाँ तो गिरिडीह बहुत फेमस था अबरक के लिए, माइका के लिए।
अच्छा।
जो आज के दिनों में वो तो लुप्त हो गया है, लेकिन एक जमाने में बहुत ज्यादा नाम था। और दूसरा कोयले के लिए भी। ये सब चीजें तो अभी कम हो गया। कोयला तो अभी भी चल रहा है, लेकिन अबरक का काम तो बिल्कुल बंद जैसा है।
किस किस चीज में इस्तेमाल होता था वो अबरक निकलता था उसे?
अबरक किस चीज में इस्तेमाल होता है ये हमें भी अभी पता नहीं। ये कि ये बहुत पहले अबरक का काम होता था हमें, लेकिन अबरक का यहाँ धंधा बहुत फेमस था उसी के लिए। और दर्शनीय स्थल में है यहाँ पारसनाथ, जैनों का बहुत बड़ा मंदिर है।
अच्छा।
और जैन लोग काफी तादाद में आते हैं, टूरिस्ट लोग। और मेरे करीब में एक खंडोली पहाड़ है और एक वाटरफॉल है। ये सब 1 जनवरी को पूरा मैंने जगमग रहता है।
अब तो ये मौसम भी है पिकनिक,
बस बस आ रहा है।
तो चलिए, तमाम लोगों से आपकी बातचीत के साथ हम ये भी शेयर कर दें कि पिकनिक का समय है और जरूर अपने साझेदारों के साथ, रिश्ते नातेदारों के साथ और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाई नहीं जाइए, लेकिन पिकनिक स्पॉट की जो साफ सफाई है उसका ध्यान रखिए, उससे हानि ना पहुंचे इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा हर पिकनिक में, तभी वो हर दूसरे आने वाले के लिए उतनी ही शुद्धता के साथ बची रहेगी और पर्यावरण हमारा बचा रहेगा। और बस इसे यूं ही गुनगुनाते रहिए, रिश्ते बनाते रहिए, उन्हें महसूस करते रहिए। और अब तो मोबाइल फोन है तो घंटी भी बजाते रहिए, बातचीत करते रहिए, खतों खतूतों की बात है तो वो भी करते रहिए, क्योंकि लिखते पढ़ते रहना भी बहुत जरूरी है, तभी शब्दों के माध्यम से आपके एहसास और लोगों तक पहुंचे, ये होते रहना चाहिए। बस यही हमारी गुजारिश है। आज हमारे साथ थे मोहम्मद यासीन अंजान साहब झारखंड गिरिडीह से। यासीन साहब, सप्ताह के श्रोता में आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए अरपा रेडियो, अरपा कम्युनिटी रेडियो, अरपा वेब रेडियो की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार।
आखिर में एक बात कहना चाहूंगा।
जी जी, जरूर।
सभी श्रोता भाइयों से ये कोविड का टीका जो है वो सभी लगवाएं
जी,
और इसका जो अनुपालन है वो करते रहें, इसलिए कि ये अभी तक भागा नहीं है और तीसरा लहर आने की बात लोग कह रहे हैं, इसलिए सभी मास्क लगाएं, हाथ धोएं और दूरी बनाए रखें। सभी से मेरी यही गुजारिश है।
बिल्कुल, मोहम्मद यासीन अंजान साहब के इस नोट के साथ कार्यक्रम को खत्म करते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए और वैक्सीन जरूर लगाइए, और आपके आसपास, आपके अगल बगल, आपके नाते रिश्तेदारों में, दोस्तों यारों में यदि किसी ने वैक्सीन नहीं लगाई है तो उसे भी प्रेरित करिए। और यही काम है रेडियो का कि एक दूसरे को प्रेरित करते रहना। और बने रहिए अरपा कम्युनिटी रेडियो और अरपा वेब रेडियो के साथ। मोहम्मद यासीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े हैं। धन्यवाद।
सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में आज हमारे साथ गिरिडीह झारखंड के वरिष्ठ श्रोता साथी मोहम्मद यासीन अंजान थे और इनसे विस्तार से बातचीत की सुनील चिपड़े ने।
आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।